الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो इस क्लास में हम मिसाली मर्द की किताब में से पढ़ते हैं, जो कि हमारे हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहुम के बयानात पर मुश्तमिल है। इसमें से अब आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है मिसाली शागिर्द का, यानी एग्जेम्पलरी स्टूडेंट, इसको अगर अंग्रेजी में आप तर्जुमा करना चाहें। तो इसमें इल्म की अहमियत से हजरत ने बात शुरू करी थी, और यानी हमारे दीन में ये इल्म का जो खास मकाम है और कैसे कैसे इसको साबित किया जाता है, और उसके बाद फिर साहिब इल्म का मकाम, यानी जो इल्म वाला होता है उसका क्या मकाम है, फिर उसके बाद तालिब इल्म का मकाम। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम पेज नंबर 192 के ऊपर थे, जिसमें कि आखिरी बात जो हमने पढ़ी थी वो सहाबाए कराम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नवीद सुनाई है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह ताला से राजी हो गए। तो ये जो थे नबी अलैहिस्सलाम के बिला वास्ता शागिर्द थे सहाबाए कराम, तो अल्लाह ताला ने इनको जो है वो इनको इनका तो पहले इम्तिहान लिया, और वो इम्तिहान किया था तकवा का इम्तिहान, कि ये तकवा के स्टैंडर्ड के ऊपर अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड तो सबसे ज्यादा हाई स्टैंडर्ड होगा ना, तो सबसे गोया के मुश्किल इम्तिहान था जो अल्लाह ताला खुद ले रहे थे, जो के दिलों के अहवाल से भी वाकिफ हैं। और फिर उसके बाद इस इम्तिहान के अंदर कामयाबी इन लोगों ने पाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत से राजी हो गए। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला उनवान है इस बयान के अंदर वो है जामिया सुफा और उसकी शाखें। तो फरमाते हैं कि अपने तौर पर समझने के लिए हम उसको जामिया सुफा का नाम दे देते हैं, यानी जो अस्हाब सुफा का मदरसा नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी के अंदर बनाया था, तो उनको आप उसको आप जामिया सुफा यानी सुफा एकेडमी, आजकल बहुत सारे स्कूल भी जो है वो सुफा सेवियर स्कूल, सुफा एकेडमी और सुफा मदरसा, जामिया सुफा। ठीक है, जाहिर है एक मुसलमान जो सहाबा के नाम से मोहब्बत करता है तो वो उनके जो है ना वो जगह से अपने मदरसों को मंसूब करते हैं, तो अपने समझने के लिए हम इसको जामिया सुफा का नाम दे देते हैं। ये जामिया सुफा नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया और फिर ये सिलसिला उम्मत के अंदर चलता रहा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सिलसिला युअल्लिमुहुमुल किताब का वहां से शुरू किया, किताब का इल्म पढ़ाना बाकायदा तुलबाए कराम को। तो ये सिलसिला जो है फिर जामियात की शक्ल में चलता रहा। उसी तरह दूसरे सिलसिले भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो शुरू किए, यतलु अलैहिम आयातिही का सिलसिला, जिसके अंदर के कुरान मजीद की तिलावत का सीखना और सिखाना भी आ जाता है, और दावत व तबलीग भी यतलु अलैहिम आयातिही के अंदर ही कवर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आयात सुनाने का मतलब ही होता है कि अल्लाह की बात को पहुंचा देना, तो इसको तबलीग कहते हैं, और दावत देना यानी अल्लाह की तरफ दावत देना। ठीक है, तो तिलावत यानी आयात की तिलावत करके अल्लाह की तरफ दावत दी जाती है और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाता है, दोनों का मकसद एक ही होता है। तो दावत और तबलीग का सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम ने जो शुरू फरमाया तो उस वक्त से चल रहा है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने इसको शुरू नहीं किया, ठीक है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने तो एक तरतीब जो है वो अल्लाह की तौफीक से शुरू करी, लेकिन दावत व तबलीग का सिलसिला नबी अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था और वो उस वक्त से चला हुआ आ रहा है उम्मत के अंदर। उसी तरह वो युज़क्कीहिम का सिलसिला भी नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने शुरू करवाया, और मशायख उज़्ज़ाम ने उस सिलसिले को जो है वो आगे तक चलाया और वो आज तक उम्मत के अंदर चल रहा है। तो अभी यहाँ पर हम जो है वो खास किताब के इल्म की बात कर रहे हैं। तो फरमाया कि आज भी उसकी शाखें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जामिया सुफा की शाखें। पूरी दुनिया में जितने मदारिस हैं सब के सब जामिया सुफा की शाखें हैं, और जो तुलबा इन मदारिस में पढ़ने के लिए अपने घरों से निकलते हैं तो उनको सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम से निस्बत है, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से जो है वो मदरसे में जाते थे और मदरसे में असातज़ाए कराम से इल्म हासिल करते थे, जैसे आज जो है तुलबा वो मदरसे में जाके असातज़ाए कराम से इल्म हासिल करते हैं। ये असहाबे सुफ्फा की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ी बशारतें और मुबारकें हैं, ठीक है। सहाबे कराम असहाब सुफा के, चाहे उसमें जो है वो पार्ट टाइमर्स थे, जैसे मक्का मुकरमा से हिजरत करके आने वाले जो कि अब खानदानों के साथ मदीना तैयबा में रहते थे, तो वो पार्ट टाइमर्स थे, ठीक है, इसी मदरसे के, और बाकी जो है वो फुल टाइमर्स थे कि जिनका के कोई घर बार मदीना मुनव्वरा में नहीं होता था, तो वो यहीं पे बोर्डिंग करते थे, ठीक है, जामिया सुफा के अंदर। तो अब ये जो हजरत ने फरमाया कि जितने मदारिस हैं सब के सब जामिया सुफा की शाखें हैं, तो अब इसमें जो है ना वो हमें थोड़ी सी तफसील कर लेनी चाहिए आज के हालात के हिसाब से। तफसील की यहाँ पे जरूरत महसूस की जाती है कि भाई सारे मदारिस जो है वो जामिया सुफा की शाखें हैं, या जिन मदारिस में उस तरीके की तालीम दी जा रही है या उस मिजाज के ऊपर तालीम दी जा रही है, उस सोच के साथ तालीम दी जा रही है, जिस सोच के साथ, जिस मिजाज के साथ, जिस तरीके के साथ जामिया सुफा के अंदर तालीम दी जाती थी, तो क्या हर मदरसा उसकी शाख है या सिर्फ वो मदरसे उसकी शाख कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम दावा तो कर सकते हैं कि नहीं, सारे मदरसे तो उसकी शाख नहीं है, ठीक है, सारे मदरसे यानी हर जगह जहां पर किताबें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, तो वो जामिया सुफा की शाख नहीं है, ठीक है। तो अब हजरत की जो ये इजमाली बात है, इस इजमाल की तफसील ये है कि सारे उसकी शाख नहीं है। तो अब इसमें पहला तो जहन में यही बात आती है ना कि भाई शायद ये कहना चाह रहे हों कि जहां पर दुनियावी उलूम पढ़ाए जाते हैं तो वो जामिया सुफा की शाख नहीं है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सा जो है ना वो बड़ा ही यानी कन्वीनियंट किस्म का एक आपने जवाब दे दिया कि दुनियावी उलूम वाले जो है वो जामिया सुफा की शाखें नहीं है, सिर्फ दीनी उलूम वाले दुनिया जामिया सुफा की शाखें हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो बात की जा सकती है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि दुनियावी उलूम वाले जामिया सुफा की शाखें नहीं है, ठीक है, जामिया सुफा की शाखें दुनियावी उलूम वाले भी बन सकते हैं, जिनको के दुनियावी उलूम कहा जाता है या फुनून कहा जाता है, असल में उनके लिए लफ्ज है फुनून, ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, जैसे कि दूसरे किस्म के फुनून है, मेडिकल साइंस है या एस्ट्रोनॉमी है वगैरह, ये दुनियावी उलूम कहलाते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, दुनिया तो सिर्फ उसका नाम है जो कि बंदे को परवरदिगार से दूर करते हैं, दुनिया तो उसको कहते हैं, ठीक है, बाकी जो चीजें हैं अगर वो परवरदिगार से करीब होने का सबब बन रही हैं तो वो दुनिया है ही नहीं, ठीक है ना, वो दुनिया है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ना दुनिया और दीन का जो डिवीजन है, इसको जो है वो हम आर्ग्यू अवे कर सकते हैं, ठीक है ना, कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब जो है वो अगर सारे उलूम इसके अंदर शामिल, ठीक है, तो अब इन सारे उलूम में फिर कौन से उलूम जो हैं या कौन से जो जो मदारिस हैं जिनके अंदर उलूम जो पढ़ाए जा रहे हैं, किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं, वो जामिया सुफा की शाखें कहलाएंगी और कौन सी जो है वो जामिया सुफा की शाखें नहीं कहलाएंगी, ठीक है ना। हाउ डू यू डिटरमिन दैट, किस बेसिस के ऊपर जो है वो इसका फैसला किया जाएगा कि कौन से मदारिस जामिया सुफा की शाखें हैं और कौन से मदारिस जामिया सुफा की शाखें नहीं है। तो अगर पहले आप जो है वो एक शॉर्ट लेकर के देखें इसके ऊपर कि इसका क्या जवाब देना चाहिए कि कौन सी जो मदारिस हैं वो जामिया सुफा की शाखें हैं और कौन से मदारिस जामिया सुफा की शाखें नहीं है। सऊदी अरब के अंदर बाय द वे जितने सेक्युलर स्कूल्स हैं ना उनको भी मदारिस ही कहा जाता है, जहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे जहाँ पे कोई और इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया, सबको मदारिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब मदारिस तो सारे के सारे हमने कह दिए हैं, ठीक है ना। तो अब उनमें से कौन से जामिया सुफा की शाख है और कौन से जामिया सुफा की शाख नहीं है, तो अगर आप इसका जवाब दे दें तो शायद इसका काम आसान हो जाएगा। जी कौन सी शाख है और कौन सी शाख नहीं है जामिया सुफा की? वो उलूम के जिनकी सनद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। सवाल कुछ था, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मैं उलूम की थोड़ी पूछ रहा हूँ कि कौन से उलूम जो है वो जाने जामे सुफा की शाख हैं। मैं इसने तो आपसे सवाल ही नहीं किया ये वाला। जी कुरान और सुन्नत के मुताबिक उलूम जो, फिर वही उलूम की बात। सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ आ रहा है, ये तो सही नहीं है। हरमैन शरीफैन में जो कुरान मजीद के हलके लगते हैं, क्या वो भी जामे सुफा की शाख में आएंगे या नहीं? आप मेरे सवाल का जवाब दें, आगे से एक नया सवाल ना करें। यानी वो उलूम पढ़ाए जाते हैं जहां वो उलूम पढ़ाए। अच्छा दारुलूम देवबंद, चलो जी इन्होंने तो मसला ही हल कर दिया ना, दारुलूम देवबंद। अच्छा नहीं, सही जवाब दें जी। कौन से जो मदारिस होंगे वो जामिया सुफा की शाख कहलाएंगे और कौन से मदारिस हैं वो जामिया सुफा की शाख नहीं कहलाएंगे? चलें आप इतना कॉम्प्लिकेशन के अंदर मत जाएं, दुनियावी उलूम या फ़नून या सेकुलर साइंसेज उनको छोड़ दें, सिर्फ दीनी उलूम की बात कर लें अगर, ठीक है ना। दीनी उलूम में से दीनी उलूम के कौन से मदारिस जो हैं वो जामिया सुफा की शाख कहलाएंगे और दीनी उलूम के कौन से मदारिस जो हैं वो जामिया सुफा की शाख नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। अब सवाल ज़रा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं हो गया? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु की तालीम के मकासिद के तर्ज पर है, मकासिद के तर्ज पर है, ठीक है। जवाब तो आपका गलत नहीं कह सकते बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको इजियर जवाब दे सकें, जहाँ तस्किए की तरतीब हो। अच्छा जहाँ तस्किए की तरतीब हो वो खाली कहलाएंगे। अदब भी सिखाया जाता हो, ठीक है, अखलाक सिखाया जाता हो, तस्किए के तरतीब हो, ठीक है, ये सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर ब्रॉडर कर लें, इंक्लूसिव कर लें, उलमाए हक सोच पर मुनसर है, जैसे कि आपने बताया कि इन मदारिस की सोच कैसी है, अगर उनका मकसद और सोच उनके जैसी है, जो मा अना अलैहि व असहाबी के मुताबिक हो, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, जो मा अना अलैहि व असहाबी, जो नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि जिस पर मैं वो यानी जिसके ऊपर मैं हूं और जिसके ऊपर मेरे असहाब हैं वो उसके मुताबिक हो, ठीक है ना। और फिर इन्होंने माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दे दिया, सहीहुल अकीदा जो, सहीहुल अकीदा जो मदारिस होंगे वो जामिया सुफा की शाख कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। अब उस अकीदे का नाम जो है वो अहलु सुन्ना वल जमात, ठीक है ना, उस अकीदे का नाम क्या है, या जो जमात उस अकीदे के ऊपर है, जिस अकीदे पे सहाबा कराम थे, ठीक है, तो उस जमात का नाम क्या पड़ गया उम्मत के अंदर, अहलु सुन्ना वल जमात, ठीक है, जिसको के फिर जाहिर अहलु सुन्ना वल जमात वाले जो हैं वो उलमाए हक भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी दलील क्या है, ठीक है, इसकी दलील क्या है कि जो अहलु सुन्ना वल जमात वाले होंगे या जो अहले हक होंगे या जो सही उल अकीदा होंगे वही जामिया सुफा की शाख कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इसकी दलील के लिए जो है ना, इस आदिज ने आपके लिए सूरह बकरा की एक आयत की तफसीर खोल करके अपने सामने रखी हुई है, ठीक है। तो उसको इरादा यह है कि हम आपके सामने ना इस क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, बाकी मिसाली शागिर्द बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कि सूरह बकरा की तफसीर हमारी क्लास के अंदर होने की फिलहाल तो मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई आसार नजर नहीं आते, अभी सूरह यूसुफ ही खत्म नहीं होकर के दे रही, ठीक है ना। फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी सूरत शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से। सूरह बकरा तो सबसे बड़ी सूरत है, उसको तो शायद पता नहीं कब शुरू करें। तो हमने सोचा कि सूरह बकरा की इस आयत की तफसीर इसी क्लास के अंदर आपको सुना देते हैं, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है, जिसमें हजरत ने कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर बयान करी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ठीक है ना। अगर वो ईमान लेकर के आए बिमिस्ल के, जिस तरह तुम ईमान लेकर के आए, तुम कौन, मी एंड यू, नो, उस वक्त जो थे, जो कुरान मजीद के मुखातब थे सहाबाए कराम, ठीक है ना। तुम से मुराद यहां पर एक नबी अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो एक वाहिद थे। तुम जो है ये जमात के लिए इस्तेमाल होता है, ये जमा का सीगा है। तो जमा कौन थे, वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो सहाबे कराम की जमात थी, उनको अल्लाह ताला मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि अगर ये ईमान लेकर के आएंगे, यानी दूसरे लोग सहाबे कराम के अलावा जो लोग हैं वो ईमान लेकर के आएंगे जैसे कि तुम ईमान लेकर के आए हो, फकत एहतदौ, तो तहकीक के वो हिदायत के ऊपर है। वह इन तवल्लौ, और अगर ये फिर जाएंगे, अगर ये पीठ फेरेंगे, यानी वैसे ईमान लेकर के नहीं आएंगे जैसे कि तुम ईमान लेकर के आए हो, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो फिर वो जिद पर हैं, या फिर वो जो है ना वो यानी एक डिसेंशन के ऊपर है, ठीक है ना, वो एक अलग रास्ते के ऊपर है, गुमराही के ऊपर है, जिसको उर्दू में गुमराही कहा जाता है, ठीक है। तो अगर वो उस तरीके के बजाय कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे तो वो गुमराही के ऊपर हैं। फसा यकफी कहुमुल्लाह, बस अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए, उन तुम्हारी तरफ से उनको अल्लाह ताला काफी हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारी तरफ से उनको अल्लाह ताला काफी हो जाएगा। वह समीउल अलीम, और वो असमीउ भी है, सब कुछ सुनने वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। सिबगतुल्लाह, अल्लाह ताला का रंग हमने कबूल कर लिया, ठीक है ना, ये तफसीर है, हमने कबूल किया कर लिया सिबगतुल्लाह, अल्लाह ताला का रंग। वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, और कौन है ज्यादा बेहतर रंग के अंदर अल्लाह के बाद, अल्लाह से ज्यादा कौन ज्यादा बेहतर है रंग के एतबार से, रंग चढ़ाने वाले के एतबार से, बाकी तफसीर में है। व नहनु लहु आबिदून, और हम उसी की बंदगी करते हैं, व नहनु लहु आबिदून। तो सूरह बकरा की 136, 137 और 138 आयात, ठीक है ना, मारफुल कुरान की जिन नंबर एक के अंदर आप इसकी तफसीर पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो है ना वो मारुफ मसाइल में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर बयान फरमाते हैं कि ईमान की मुख्तसर और जामिया तफसीर, ईमान की मुख्तसर और जामिया यानी ऑल इंक्लूसिव, सारी की सारी चीजों को जिसने इंक्लूड कर लिया ना उसको जामिया कहते हैं, ठीक है, वो है फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ये है ईमान की मुख्तसर और जामे। क्यों, इसलिए कि सूरह बकरा के इब्तदाई से ईमान की बहस शुरू हो गई थी और बड़ी सारी तफसीर उसके अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक आयत के अंदर जो है ना वो ईमान की एक जबरदस्त किस्म की, तो फरमाते हैं कि शुरू सूरह बकरा से यहां तक ईमान की हकीकत कहीं मुजमल कहीं मुफस्सल बयान की गई है। इस आयत में एक ऐसा इजमाल है कि जो तमाम तफसीलात और तशरीहात पर हावी है, ठीक है ना। इस आयत के अंदर ऐसा इजमाल है, ऐसा जो है ना वो यानी क्या कहते हैं, समराइज किया हुआ है अल्लाह ताला ने कि वो तमाम तफसीलात और तशरीहात जो कि इससे पहले आई या उसके बाद आएंगी उन सब के ऊपर हावी है, क्योंकि आमंतुम के मुखातब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम है, यानी पूरी जमात है, कोई एक फर्द नहीं है, ठीक है। इस आयत में उनके ईमान को एक मिसाली नमूना करार देकर हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के नजदीक मकबूल और मोतबर सिर्फ उस तरह का ईमान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इख्तियार फरमाया। जो एतकाद इससे सिर मुंह मुख्तलिफ हो, जरा सा भी यानी मुख्तलिफ हो, अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं है, कबूल नहीं है। मकबूल का मतलब वो नहीं कि पॉपुलर नहीं है, बल्कि कबूल नहीं है। मकबूल का मतलब होता है कबूल, कबूल होना यानी रद्द कर दिया जाएगा, जो कि उस सहाबा कराम के ईमान के मुताबिक ना हो। अब इसकी वजाहत ये है कि जितनी चीजों पर ये हजरात ईमान लाए उनमें कोई कमी ज्यादती ना हो, उनमें कोई ना कमी हो ना ज्यादती, और जिस तरह इखलास के साथ ईमान लाए उसमें कोई फर्क ना आए। ईमान के अंदर 1% भी मिलावट की इजाजत नहीं, 1% या 0.00000 जितना हम याद कर लें, 1%, ठीक है ना, 0.001% भी मिलावट ईमान के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। आमाल के अंदर जो है ना वो बहुत कुछ गुंजाइश है, ईमान के अंदर गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो इखलास ये ईमान से ताल्लुक रखता है, इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। तो फरमाते हैं कि जिस तरह इखलास के साथ सहाबे कराम ईमान लाए इसमें कोई फर्क ना आए कि वो निफाक में दाखिल हो जाए, ठीक है। और अल्लाह ताला की जात व सिफात, फरिश्ते, अंबिया और रसुल, आसमानी किताबें और उनकी तालीमात के मुताल्लिक जो ईमान और एतिकाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया वही अल्लाह के नजदीक मकबूल है, उसके खिलाफ इसमें कोई तावील करना या कोई दूसरे माना मुराद लेना अल्लाह के नजदीक मर्दूद है। फरिश्तों और अंबिया व रसूल के लिए जो मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल से वाज़ह हुआ उससे उनको घटाना या बढ़ाना ईमान के मुनाफी है, ठीक है। तो जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया ना, सहाबा कराम ने वैसे ही ईमान लिया, और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को शामिल कर लिया आमंतुम बिही के अंदर, ठीक है। यानी जैसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ईमान की तफसीलात लेकर के आए, सहाबा कराम ने वैसी ही तफसीलात को कबूल किया और वैसे ही तफसीलात के ऊपर कायम रहे, ठीक है। तो सहाबा कराम को भी अल्लाह ताला ने स्टैंडर्ड के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ सहाबा कराम को भी स्टैंडर्ड में शामिल कर लिया। ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ईमान लेके आए थे, सहाबा कराम ने उसके अंदर कुछ कमी कर दी, कुछ इफराद कर दिया, कुछ तफरीद कर दिया, नहीं, ठीक है। तो अब फरमाते हैं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह कि इस तौजीह से उन तमाम बातिल फिरकों के ईमान का खलल वाजे हो गया जो ईमान के दावेदार हैं, दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं मगर हकीकत ईमान से बेबहरा है, क्योंकि जुबानी दावा ईमान का तो बुत परस्त मुशरिकीन भी करते थे, बुत परस्त मुशरिकीन भी और यहूद व नसारा भी, और हर जमाने में जिंदीक व मुलहिद भी, ठीक है। जो इल्हाद का शिकार होते हैं ना उसी को जनादका भी कहा जाता है, इल्हाद को, तो वो भी ईमान का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, ठीक है ना। हम भी अहले अहले किबला हैं, काबतुल्ला की तरफ रुख करके जो है वो हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी ईमान वाले हैं। नहीं, अहले किबला का ये मतलब है ही नहीं कि काबतुल्ला की तरफ रुख करके आप सजदा कर रहे हो तो आप अहले किबला के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मुशरिकीन मक्का भी काबतुल्ला की तरफ रुख करके ही सजदा किया करते थे, ठीक है ना। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम का वो मजाक उड़ाया करते थे कि ये कैसे हैं कि ये जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके सजदा करते हैं। मस्जिद अक्सा तो अल्लाह ताला का घर नहीं है, अल्लाह ताला का घर तो काबतुल्ला है, ठीक है। तो वो काबतुल्ला की तरफ सजदा करते थे तो वो अहले किबला हो गया, इसका मतलब है, राइट। और वो अहले किबला हो गया तो वो अहले ईमान भी हो गया, इसका मतलब है, हरगिज नहीं, ठीक है। तो हर जमाने में जिंदगी को मुलहिद भी, मगर चूंकि उनका ईमान अल्लाह पर और रसूलों पर और फरिश्तों पर और यौम कयामत वगैरह पर उस तरह का नहीं था जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसलिए वो अल्लाह के नजदीक मरदूद व ना मकबूल हुआ, उनका ईमान मरदूद हुआ, उनका ईमान जो है वो ना मकबूल हुआ, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो जिस कंफ्यूजन का हम शिकार है ना, वो कंफ्यूजन ये है कि हम ईमान को जो है ना वो अमल के साथ और अखलाक के साथ हम कंफ्यूज कर देते हैं, हम दोनों को एक ही चीज समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। कि भाई जो जो यानी जैसे अच्छे अमाल वो किया करते थे और जितने ज्यादा अमाल वो किया करते थे, जितनी ज्यादा कुर्बानियां जो वो दिया करते थे ना, तो हम जब तक उतनी कुर्बानियां नहीं देंगे तब तक जो है ना वो हमारा ईमान कबूल नहीं होगा, हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कि उस तरह की जिहाद जब तक हम नहीं करेंगे जैसे कि सहाबा कराम ने किया तो हमारा ईमान कबूल नहीं होगा, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, उतनी नमाजें हम जब तक नहीं पढ़ेंगे जितनी नमाजें कुछ सहाबा कराम पढ़ा करते थे, या उतना जो है वो अपने माल को सदका खैरात नहीं कर दिया करेंगे जब जितना कि सहाबा कराम सदका खैरात कर दिया करे, तो उस वक्त तक हमारा दीन कबूल नहीं होगा। नहीं, ये इसका बिल्कुल भी है मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम कभी भी कुर्बानियों के अंदर सहाबा कराम के करीब भी नहीं पहुंच सकते, उनके जैसा होना तो दूर की बात, ठीक है ना। बिमिसली मा आमन तुम होना तो दूर की बात, हम उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते आमाल के अंदर, कुर्बानियों के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि वो जिस हाल में नबी अलैहिस्सलाम की मदद किया करते थे ना, वो हाल दुनिया के अंदर आ ही नहीं सकता दोबारा। इस्लाम तो दुनिया के अंदर फैल चुका, इस्लाम तो दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश हो चुका। अब कोई भी कितनी बड़ी भी कुर्बानी दे दे, वो सहाबा कराम की कुर्बानी के बराबर हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये तो एक इम्पॉसिबल चीज है। अल्लाह ताला इम्पॉसिबल चीज का अपने बंदों से डिमांड नहीं करते। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमारी वसत ही इतनी नहीं नहीं है कि हम सहाबे कराम के जैसे आमाल और कुर्बानियां और मुजाहिदे लेकर के आ सकें, हमारी वसत है ही नहीं। अल्लाह ताला का उसूल ये है, ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ठीक है ना। तो यहां पर किस चीज की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, यहां पर सिर्फ ईमान की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, और ईमान इज डिफरेंट फ्रॉम आमाल, ठीक है ना। ईमान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की हर बात की तस्दीक करने का नाम है, तस्दीक करना। नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ भी लेकर के आए थे, और बाकी जिन लोगों ने पिछली क्लास में कुछ तवज्जो से सुनी है, खुसूसन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली क्लास, वो ये बात जानते हैं कि जब हम ये कह देते हैं कि जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे, तो इसके बाद अगला सवाल ये पैदा होता है कि नबी अलैहिस्सलाम क्या कुछ लेकर के आए थे, क्या कुछ लेकर के आए थे, ठीक है ना। क्या कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला एक है, जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, क्या करते हैं फरिश्ते, किस किस्म के उनको अल्लाह ताला ने काम दिए हुए हैं, जन्नत का मामला कैसा है, जहन्नम का मामला क्या है, आखरत का मामला कैसे होगा, कब्र के अंदर क्या मामला है, नबी नबुवत के जो है वो क्या था और क्या नहीं था, नबुवत का सिलसिला, ये सब जो है ना, ये अकायद है, इनको अकायद कहा जाता है, ठीक है ना। हत्ता के नमाजें कितनी है, पांच है कि तीन है, पांच नमाजों का मानना ये अकीदा है, ये अकीदा है। पांच नमाजों का दिन के अंदर फर्ज मानना ये अकीदा है, पढ़ना अकीदा नहीं है, नहीं पढ़ा तो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो गए, लेकिन ईमान खत्म नहीं हो जाएगा, अकीदा खराब नहीं हो जाएगा, जब तक ये ना कह दो कि नहीं पांच नमाजें हैं ही नहीं बल्कि चार नमाजें हैं, या ये कहो कि नहीं छह नमाजें हैं। अगर छह नमाजें कह दोगे तो अकीदा खराब हो जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा, क्योंकि पांच नमाजें जो है वो कुरान मजीद से साबित हैं, हदीस मुतवातिर से और तआमुल उम्मत से साबित हैं। तो अगर छह नमाजें कहोगे कि ये फर्ज हैं, गए, छह नमाजें पढ़ोगे नहीं, पांच नमाजें पढ़ोगे नहीं, ईमान से नहीं जाओगे, ईमान फिर भी सलामत रहेगा, हाँ बहुत ही कमजोर हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। जकात 2.5% देना जो है ये फर्ज है, इससे अगर इनकार करोगे कि नहीं जकात फर्ज नहीं है, ये नफली सदका है, दोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं दोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, बस, ठीक है ना, ईमान से हाथ धो बैठे, ठीक है। जकात नहीं देना, इससे जो है वो ईमान खत्म नहीं होता, इससे इंसान गुनहगार होता है, उसका ईमान कमजोर होता है, खत्म नहीं हो जाता। तो ये सारे के सारे अकायद हैं जो के सहाबे किराम के अकायद थे, ठीक है। तो अब जो है ना, जो फरमाया कि भाई ये जो जितने भी चाहे वो यहूद नसारा हो, चाहे वो मुशरिकीन हो, चाहे जो है वो आजकल के कादियानी हो, या दूसरे किस्म के जो है वो बदअकीदा मुलहिद किस्म के लोग हो, वो कितना ही कहते रहे कि हम मोमिन है, मोमिन है, मोमिन है, लेकिन अगर सहाबा कराम के जो अकायद थे, सहाबा कराम के जो अकायद थे, उन अकायद से हट करके इनका कोई अकीदा है, ठीक है ना, कतई अकायद जो के दलील के साथ साबित हो गए सहाबा कराम के ये कतई अकायद थे, ठीक है ना, उनसे हट करके इनका कोई अकीदा है, तो इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये ईमान वाले नहीं है। तो फरमाते हैं कि शरीयत इस्लाम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व मोहब्बत फर्ज है, उसके बगैर ईमान ही नहीं होता, मगर रसूल को किसी सिफत सिफत इल्म या कुदरत वगैरह में अल्लाह ताला के बराबर कर देना गुमराही और शिर्क है। कुरान करीम ने शिर्क की हकीकत यही बयान फरमाई है कि गैर अल्लाह को किसी सिफत में अल्लाह के बराबर कर दें। इज़्ज़ुल मुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन का यही मफहूम है। आज भी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमुल गैब और खुदा की तरह हर जगह मौजूद और हाजिर और नाजिर कहते हैं, ये समझते हैं कि हम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं, हालांकि वो खुद आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की और उम्र भर की कोशिशों की सरीह मुखालफत कर रहे हैं। इस आयत में उनके लिए भी सबक है कि आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व मोहब्बत अल्लाह के नजदीक ऐसी ही मतलूब है जैसी सहाबा कराम के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। इससे कमी भी जुर्म है और इसमें ज्यादती भी गुलू और गुमराही है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी और रसूल की इख्तराई किस्में जुल्ली बरवजी लुगवी सब गुमराही है। इसी तरह जिन फुरकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म नबूवत का इनकार करके नए नबी के लिए दरवाजा खोलना चाहा और कुरान करीम की वाजह तसरी खातिमुन नबीयीन को अपने मकसद में हायल पाया, तो उन्होंने रसूल और नबी की बहुत सारी किस्में अपनी तरफ से इख्तरा कर ली, जिनका नाम नबी, नबी जल्ली, नबी बरवजी वगैरह रख दिया, या बरोजी कैसे इसको पढ़ते हैं, बरवजी गारून, और उनके लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश की, यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये नहीं, ये नबी जो है ना ये जल्ली नबी हैं या ये फलाने दूसरे किस्म के नबी हैं। ठीक है, तो जिन्होंने इस किस्म की गुंजाइश निकालने की कोशिश करी, तो बरूजी, बरूजी ही पढ़ते हैं, बरूजी नहीं पढ़ते। अच्छा, आपको मैंने किसी से सुना नहीं आज तक एक्चुअली इस लफ्ज को। तो मजकूर उस सदर आयत ने उनके दजलो गुमराही को भी वाजह कर दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ईमान बिल रसूल में किसी जुल्ली व बरूजी का कहीं नामो निशान नहीं था। ये खुला हुआ ज़िनादिका और इल्हाद है। ठीक है, कि यानी सहाबे कराम के यहाँ इस किस्म की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी इस किस्म के नबी की। ठीक है, तो इसी तरह वो लोग जिनके कल्ब व दिमाग सिर्फ मादे और मादियात में खोए हुए हैं, मटीरियलिज्म, ठीक है ना, आलम गैब और आलम आखिरत की चीजें जब उन्हें मुस्तबअद नजर आती हैं तो तरह तरह की तावीलों में पड़ जाते हैं और अपने नजदीक उसको दीन की खिदमत समझते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो कि हमारे तालीमी निज़ाम के बानी, यानी बिला वास्ता बानी वो हैं और बिल वास्ता बानी जो है वो अंग्रेज है, तो उन्होंने इसको दीन की खिदमत समझा, या कम से कम इसको प्रूफ करने की कोशिश करी कि मैं तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, तो तरह तरह की ताबीरों में जो पड़ जाते हैं, अपने नजदीक उसको दीन की खिदमत समझते हैं कि हमने उसको अकरब इलल फहम कर दिया। ठीक है, जैसे वो हमारे शेखुल हदीस साहब ने कि एक किसी डॉक्टर साहब की जो है वो तफसीर, तफसीर बताई कि भाई उन्होंने जो है ना वो जो जो कल्ब है, जो 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 कुरान मजीद के अंदर जो तस्करा है कल्ब का, तो उसको जो है ना वो फिजिकल हार्ट के साथ जो है वो जोड़ दिया कि बस ये फिजिकली है, क्योंकि फिजिकल हार्ट ही होता है बस इंसान के अंदर। तो इस तरह की जो है ना करीबुल अकरब इलल फहम कर देने की जो कोशिशें हैं, मगर चूंकि वो तावीलें बिमिस्ले मा आमंतुम बिही के खिलाफ हैं, इसलिए सब मरदूद व बातिल हैं। आखिरत के तमाम हालात वाकयात जिस तरह कुरान और सुन्नत में वारिद हुए हैं, उन पर बगैर किसी झिझक और तावील के ईमान लाना ही दर हकीकत ईमान है। हश्र अजसाद के बजाय हश्र रूहानी और अजाब व सवाब जिस्मानी व रूहानी, इसी तरह वजन अमाल में तावील करना सब अल्लाह के नजदीक मरदूद बातिल और गुमराही है। ठीक है ना, कि ये कह देना कि जी ये जो कयामत के दिन जो उठाए जाएंगे ना, तो ये जिस्मानी तौर पर नहीं उठाए जाएंगे, बस ये एक स्पिरिचुअल किस्म की चीज होगी, रूहानी किस्म की चीज होगी। ठीक है, उसी तरीके से जो है वो शैतान क्या चीज है, भाई शैतान के बारे में कह दिया कि बस ये जो इंसान के अपने ही अंदर जो मनफी ख्याल होते हैं ना, उसी को जो है वो वही शैतान है बस, और शैतान की कोई हकीकत नहीं है, जेन्युइन कुछ नहीं होता। ठीक है, और फरिश्ते जो है ना वो भी जो है ना जो मुस्बत ख्यालात होते हैं ना, तो वही जो है वो फरिश्ते हैं, उसके अलावा फरिश्तों की कोई हैसियत नहीं है। तो इसको जो है ना वो बेसिकली अंग्रेजों की फहम के साथ या मॉडर्न क्या कहते हैं थ्योरीज और साइंस और डार्विन्स थ्योरी और इन सब चीजों से जो है ना वो दीन को अलाइन करने की जो कोशिशें थी ना, ये सारी की सारी सहाबे कराम के अकायद से मैच नहीं करती हैं, सहाबे कराम के अकायद से मैच नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से फरमाया कि सब के सब मरदूज बातिल और गुमराही है, और फिर फसा यकफी का हम अल्लाह में वाजे फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालफों की ज्यादा फिक्र ना फरमाएं, हम खुद उनसे निपट लेंगे। क्या मतलब कि अकायद का सही होना बता दें, अकायद का गलत होना ये भी बता दें। ठीक है ना, लेकिन जो मुखालफी है ना, तो उनके पीछे जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ना पड़ता है ऐसे लोगों के पीछे, जैसे कि उलमाए कराम अपने इज्तिहाद में जितना मुनासिब समझते हैं कि इनकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन कर दी जाए लोगों के सामने, ठीक है ना, कि ये ग्रोह जो है ना ये गलत अकीदे का के ऊपर जमा हुआ है, फलाना जो मीडिया स्कॉलर है वो गलत अकीदे के ऊपर जमा हुआ है, तो आइडेंटिफिकेशन की हद तक जो है ना वो जरूर बता दें, ठीक है ना। लोगों को जो पता होना चाहिए कि फलाने जो मीडिया स्कॉलर हैं, फलाने साहब जो है ना ये गलत अकीदे के ऊपर हैं, लेकिन इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, इसके लिए जिस यानी फिजिकल अथॉरिटी की जरूरत होती है, वो फिजिकल अथॉरिटी उमूमन तारीख के अंदर उलमाए उम्मत के पास जो है ना वो कम ही रहा करती है, आजकल तो खुसूसन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फसा यकफी कहूमुल्ला, वाज़े फरमा दिया कि आप सब अपने मुखालफों की ज्यादा फिक्र ना फरमाएं, हम खुद उनसे निमटेंगे, ठीक है। और ये ऐसे ही है जैसा कि दूसरी एक आयत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास में इससे ज्यादा वजाहत के साथ फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालफीन की फिक्र ना करें, अल्लाह ताला उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद करेंगे, वो अपने कामों के अंदर लगे रहेंगे, आप अपने काम के अंदर लगे रहें, यानी हक और बातिल की तमीज करके लोगों तक बात को पहुंचा दें, ठीक है ना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये बलागुल मुबीन का जो है ना ये मिनिमम काम है जो कि नबियों के जिम्मे होता है। फिर उसके बाद जिहाद का जो काम है वो फिर सर्टन सिचुएशंस के अंदर फिर जिहाद भी जो है ना वो नबियों के ऊपर फर्ज हो जाता है, लेकिन शुरू में जिहाद फर्ज नहीं होता, शुरू के अंदर तो बलागुल मुबीन फर्ज होती है, ठीक है ना। तो वो तो आप करते ही रहें, जब कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि जिसके अंदर आपके पास सुल्तान आएगी, सुल्तान यानी फिजिकल अथॉरिटी आएगी, तो फिर उसके बाद जब आपको हुक्म आएगा या फतवा आएगा कि जिहाद का, तो फिर आप जिहाद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम एंड अल्लाह विल बी सफिशियंट फॉर यू अगेंस्ट देम, ठीक है। सिबगतुल्लाह, इससे पहली आयतें दीन इस्लाम को इब्राहिम, अच्छा ये फिर इस टॉपिक से इतना ज्यादा मतलब, खैर तो जाहिर है इसी आयत की तफसीर के अंदर ये भी शामिल है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हम मौजू के बारे में चंद कलमात और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट रह गए, ठीक है। तो असल बात इस पूरे के पूरे क्लास के अंदर क्या हुई कि जामिया सुफा की जो है ना वो शाखें सारे मदारिस नहीं है जो कि दीन के नाम के ऊपर किताबें पढ़ा रहे हो, बल्कि सिर्फ वो मदारिस जो हैं वो जामे सुफा की शाखें कहलाएंगी जो कि इस आयत के मुताबिक हों कि फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदू, ठीक है। बाकी जो है ना वो चाहे बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हो, चाहे मुस्लिम शरीफ पढ़ा रहे हो, चाहे कुरान मजीद की तफसीर पढ़ा रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हो, फिका हिदाया शरीफ कुछ भी पढ़ा रहे हो, अगर उनका अकीदा सही नहीं है तो वो जामे सुफा की शाख कहलाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आगे हुसूल इल्म के आदाब में फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए इंसान को तवाजो इख्तियार करनी पड़ती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खजर अलैहिस्सलाम से कहा था, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें। तो तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने मंदरजा बाला आयत से 21 नुकात निकाले, सुभान अल्लाह, 21 नुकात, और हर एक नुकता जो है ना वो सर धुनने के लिए काफी है। फरमाते हैं कि पहला नुकता हल जो लफ्ज है अत्तबिउका कहकर जाहिर फरमाया कि शागिर्द ताबिअ होता है, इत्तिबा करता है, ठीक है, फॉलो फॉलोअर होता है शागिर्द, और उस्ताद मतबू होता है जिसको फॉलो किया जाता है, जिसकी इत्तिबा की जाती है। तो अत्तबिउका मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खजर अलैहिस्सलाम को इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं, हल अत्तबिउका। लिहाजा जब भी कोई इंसान इल्म हासिल करे तो उसको चाहिए कि वो अपने उस्ताद की मुकम्मल इत्तिबा करे, ठीक है। इत्तिबा का मतलब क्या होता है, कदम से कदम मिला करके पीछे, बराबर में कदम से कदम मिला करके नहीं बल्कि फुट स्टेप्स के अंदर चलना, कदम के निशानों के अंदर अपने कदम रख करके चलना, ये फिजिकल एक तारीफ है इत्तिबा की। लेकिन जाहिर है इसका मतलब ये नहीं होता शायद साहब आगे चल रहे हैं और आप जो है वो उनके कदमों के निशानों के ऊपर चल रहे हैं, बल्कि आप उनकी इत्तबा करें, यानी जैसा वो आपको करने के लिए कह रहे हैं और जैसा कि वो खुद करते हैं वैसे उनको कॉपी करें। सिर्फ अताअत भी नहीं है इसका मतलब, इत्तबा के अंदर अताअत शामिल है कि जो हुक्म दे रहा है तो उस हुक्म की जो है वो अताअत करो, लेकिन अताअत के इससे आगे बढ़ करके उसको कॉपी भी करने की कोशिश करो, ठीक है। जिन मामलात के अंदर कॉपी करने की इजाजत है उसमें उनको अब उस्ताद को कॉपी करो, जिस मामले में उस्ताद खुद कह दें कि नहीं नहीं तुम मेरी इत्तबा इस मामले में नहीं करो, मुझे कॉपी करने की कोशिश ना करना, तो अताअत गालिब होगी, फिर उनको कॉपी नहीं किया जाएगा। लेकिन जिसके अंदर उनकी चाहत है कि शागिर्द जो है वो मेरी इत्तबा करे, वो खुद सिखा रहे हैं कि भी शागिर्द साहब जो है ना वैसे काम किया करें, तो उसके अंदर जो है ना वो उनकी इत्तबा करो, ठीक है। तो कॉपी करना और उनके हुक्म की अताअत करना, तो पहला नुक्ता क्या हुआ कि शागिर्द जो है ना वो ताबे होता है और उस्ताद मतबू होता है। फिर दूसरा नुक्ता कि फिर इत्तबा की इजाजत तलब फरमाई कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इत्तबा करूं, या उनकी तवाजो की दलील है, ठीक है, कि इजाजत से जो है ना फिर वो इत्तबा जैसा काम भी जो है वो इजाजत से कर रहे हैं, यानी बगैर इजाजत के जो है ना वो इत्तबा करने की कोशिश ना करना। हो सकता है वो उस वक्त कोई ऐसा काम करने जा रहे हो कि जो कि उनके लिए मखसूस हो, वो आम ना हो, या कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो कि उस मौके पर मखसूस काम हो और आपके ऊपर वो मौका मुनासिब नहीं बैठता हो, तो आपको इस वक्त इजाजत ना मिले उस्ताद साहब से, ठीक है। तो पूछ लेना, ये तवाज़ो की भी दलील है और ये एहतियात भी है कि भाई कोई बड़ा मसला ही कहीं क्रिएट ना हो जाए इत्तबा के चक्कर में। तीसरा और आखिरी पढ़ करके फिर हम आज की क्लास खत्म करते हैं कि तीन जो है वो मुकम्मल हो जाए, तो फिर वो जमा का सीगा हो जाएगा नुकात में, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। तो फरमाते हैं कि फिर अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा कहकर उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म अता किया है, इसमें से कुछ इल्म आप मुझे भी अता कर दी। यानी आपके पास बड़ा इल्म से मुराद नहीं कि मेरे पास जो इल्म है उससे बड़े दर्जे का इल्म आपके पास है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है ना वो शरीयत का इल्म था, ठीक है ना, और शरीयत का इल्म का जो दर्जा होता है वो इल्म लदुन्नी से बढ़ करके होता है। उनके पास इल्म लदुन्नी था, यानी कायनात का निजाम, या इल्म क्या कहते हैं यानी क्या कहते हैं कुन फयकुन का इल्म, या ये कि तकवीनी इल्म, हाँ उनके पास तकवीनी इल्म था, और शरीयत का जो इल्म होता है वो तकवीनी इल्म से बढ़ करके होता है दर्जे के अंदर, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट होता है, अमाउंट ठीक है ना, मेयर उसकी जो क्वांटिटी होती है ना, वो शरीयत के इल्म की क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। इसी वजह से शरीयत का आलिम जो है वो बनना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो तकवीनी उलूम की क्वांटिटी होती है वो यानी समझ लें कि ऑलमोस्ट इन्फिनिट, ठीक है ना, क्योंकि वो रब्बुल इज्जत की जो कायनात है उस कायनात के अंदर जो एक छोटा सा ये जो प्लैनेट अर्थ है ना, इस प्लैनेट अर्थ के अंदर ही इतने मामलात हैं कि जिनका कि कोई हिसाब नहीं, यानी मिलियंस और ट्रिलियंस और बिलियंस तो कोई कोई हैसियत ही नहीं रखते उसके सामने, ठीक है ना। तो तकवीनी इल्म जो है ना वो दर्जे में नहीं लेकिन मेयर क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो एक फरमाया कि आपको बड़ा इल्म अता किया है, इसमें से कुछ इल्म आप मुझे भी अता कर दीजिए। तो इससे साबित हुआ कि उस्ताद की अजमत को मानना चाहिए। यानी कहने का मकसद क्या है कि अगर बेशक मेरे वाले इल्म के अंदर आप मुझसे बढ़ के नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन जिसमें हैं तो मैं उसी को बहाना बना करके आपकी इज्जत कर दूं, ठीक है ना, आपका इज्जत करना मकसूद है, उसके लिए आप मैं कोई भी बहाना इस्तेमाल कर लूं, ठीक है। तो किसी चीज को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर लिया ताकि उनकी अजमत को मान का इजहार कर दिया। बास तुलबा उस्ताद का मजाक उड़ाते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, ऐसे तुलबा उस्ताद से इल्म हासिल नहीं कर पाते, इल्म हासिल करने के लिए इंसान को झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो झुकना पड़ेगा तो बिल्कुल ही गोया के दूसरी एक्सट्रीम है ना, और मजाक उड़ाना जो है वो बिल्कुल ही दूसरी एक्सट्रीम है, इस्तेहजा करना उस्ताद का, तो इस्तेहजा करना जो है ये तो फिर बिल्कुल ही यानी जो रिबेलियसनेस बिल्कुल ही जो है ना वो यानी बगावत की अलामत होती है उस्ताद के साथ। मजाक मजाक से मुराद वो नहीं कि हल्का फुल्का जो है वो माहौल को खुशगवार करने के लिए बस जो है ना वो अच्छी तमीज के दायरे के अंदर मजाक कर लिया, बल्कि उसका मजाक उड़ाना, ठीक है। इसी वजह से जो कुछ लोग जो सुन चुके हैं पहले भी कि भाई कुछ लोग जो है ना वो क्लास क्लाउन का जो रोल प्ले करने की खामखा कोशिश करते हैं ना, वो फिर हद से आगे बढ़ जाते हैं कि उस्ताद साहब की जो है ना वो बात का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो हमें खुद भी इज्तनाब करना चाहिए और अपने औलाद को भी जो है वो सिखाना चाहिए कि बेटा ये मजाक नहीं है, ठीक है ना, ये जो तो इल्म है वो भी खसूसन उलूमुल आलिया का जो इल्म है ना, तो इसके अंदर जो है ना वो मजाक उड़ाने वाली गलती जो है ना वो हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी। बहुत महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, अल्लाह ताला हमें कहीं बिल्कुल ही महरूम ना फरमा दे इसकी सजा के तौर पर। तो यहाँ पर हम आज की क्लास मुकम्मल करते हैं, खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ के बाद की समझ में की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।